आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया ममूना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो 2047 तक विकसित भारत के हदफ की तरफ मुल्क को आगे बढ़ाने में ताकत बने। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत 2047 तक दुनिया के सरकर्दा 10 समुद्री मुल्कों में शामिल हो जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि अमरीकी डॉलर मुकाबला करने के लिए ब्रिक्स की नई करेंसी शुरू करने की कोई तजवीज नहीं, जेर गौर नहीं है। बागी फोर्सेस ने मुल्क शाम के अहम शहर हिम्स पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्क का मुहासरा कर लिया है। और हॉकी में ओमान के मस्कत में खवातीन के जूनियर एशिया कप में भारत आज अपना पहला मैच बांग्लादेश से खेलेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो 2047 तक विकसित भारत के हदफ की तरफ मुल्क को आगे बढ़ाने में ताकत बने। जनाब मोदी ने ऐलान किया कि नौजवानों को ख्यालात के तबादले के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए अगले महीने विकसित भारत नौजवान लीडर्स मुजाकिरात का इनेकाद किया जाएगा। वजीर आजम कल अहमदाबाद में बोचा समवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण BAPS के रजाकारों की 50 साल की बेलौज खिदमात का जश्न मनाने के लिए एक अजीमुशान तकरीब कार्यकर्ता स्वर्ण महोत्सव से वर्चुअल वसीले से खिताब कर रहे थे।
युवा विचारों को नए अवसर देने के लिए कुछ ही सप्ताह बाद जनवरी में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, उसका भी आयोजन होगा। इसमें हमारे युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने आइडियाज देंगे, अपने योगदान की रूपरेखा तैयार करेंगे। आप सभी युवा कार्यकर इससे भी जुड़ सकते हैं।
वजीर आजम ने कहा कि वो चाहते हैं कि तमाम BAPS रजाकार हर साल एक अहद करें, जैसे कि एक साल केमिकल से पाक जरात के लिए, एक साल कसरत में वहदत का जश्न मनाने के लिए, एक साल मनशियात की लानत का खात्मा करने के लिए और एक साल दरियाओं के आहया के लिए वक्फ करें। वजीर आजम ने पूरी दुनिया में भारत की साख में इजाफा करने का सहरा BAPS को दिया। उन्होंने कहा कि 28 मुल्कों में BAPS के 1000 मंदिर और 21,000 रूहानी मराकज मुल्क की सकाफत को फरोग दे रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि TB के खिलाफ मुल्क की लड़ाई को 100 रोजा खसूसी मुहिम के आगाज से मजीद तकवियत मिली है, जिसका मकसद TB से बहुत ज्यादा मुतासर जिलों पर तवज्जो मरकूज करना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत मरीजों को 2 गुना तआवुन, नई अद्वियात टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और बेहतर तशखीसी आलात की फराहमी के साथ कसीर जहती अंदाज में TB से लड़ रहा है। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की कि TB के खात्मे के लिए मिलजुल कर अपना किरदार अदा करें। इससे पहले मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा की एक पोस्ट पर रद्दअमल का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि निक्षय मित्र और कलील मुद्दती और मौसर इलाज जैसे इकदामात से TB के मामलों में तेजी से कमी आई है और सेहतयाबी की शरह में बेहतरी आई है और TB से निमटने में भारत की आलमी क़यादत को तकवियत मिली है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत 2047 तक दुनिया के सरकर्दा 10 समुद्री मुल्कों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क बंदरगाहों में अपने बार बर्दारी की सलाहियत को तेजी से बढ़ा रहा है और जहाज की तामीर और मरम्मत का एक मजबूत इकोसिस्टम तश्कील दे रहा है। जनाब सोनोवाल कल चेन्नई में कामाराजर पोर्ट ट्रस्ट की सिल्वर जुबली तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कामाराजर बंदरगाह पर 545 करोड़ रुपए की लागत से कैपिटल ड्रेजिंग, मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कयाम के लिए संगे बुनियाद भी रखा। उन्होंने कहा कि बंदरगाह ने मुस्तकबिल में तौसी के इम्कानात के साथ कोयले की मौसर हैंडलिंग को फरोग देकर चेन्नई बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। जनाब सोनोवाल ने कहा कि 3 मिलियन टन सालाना MTPA की IOCL जेटी की तामीर से इसकी सलाहियत में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि बंदरगाह पर 32 करोड़ रुपए की लागत से एक MLD समंदर के खारा पानी को साफ करने का प्लांट न सिर्फ बंदरगाह की जरूरत को पूरा करेगा बल्कि पीने के पानी और दीगर घरेलू मकासद के लिए साहिली बिरादरी की जरूरत को भी पूरा करेगा। जनाब सोनोवाल ने कहा कि जहाजरानी की वजारत ने बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर बरवक्त अमल दरामद करके अब अहम प्रोग्रामों को तेजी के साथ मुकम्मल किया है। उन्होंने कहा कि जब तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत होती है तो मेयार पर भी तवज्जो मरकूज रहती है। जनाब सोनोवाल ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के 83वें कन्वेंशन में भी शिरकत की। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि भारत के लिए यह निहायत फख्र की बात है कि पोप फ्रांसिस के जरिए आज आर्क बिशप जॉर्ज कुआकार्ड को कार्डिनल के तौर पर तरक्की दी जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने इस तकरीब का मुशाहिदा करने के लिए मरकजी वजीर जॉर्ज कुरियन की कयादत में एक वफद भेजा है। उन्होंने मजीद कहा कि तकरीब से कबल भारतीय वफद ने पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अमरीकी डॉलर का मुकाबला करने के लिए नई करेंसी शुरू करने की कोई तजवीज जेर गौर नहीं है। कतर की राजधानी दोहा में दोहा फोरम से खिताब करते हुए जनाब जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक का अमरीकी डॉलर को कमजोर करने का कोई इरादा नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि ब्रिक्स ममालिक का इस मामले में यकसा मौकफ नहीं है। डॉक्टर जयशंकर का यह बयान अमरीकी सदर मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप के उस इंतबाह के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिक्स ममालिक मुश्तरका करेंसी शुरू करने के मंसूबे को आगे बढ़ाते हैं तो वो 100% टैरिफ्स नाफिज कर देंगे। डॉक्टर जयशंकर कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान की दावत पर दोहा फोरम में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वजीर खारजा कतर के वजीर आजम और नॉर्वे के वजीर खारजा के साथ पैनल मुबाहिसे में इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मनामा मुजाकिरात में हिस्सा लेने के लिए मनामा पहुंचे हैं। उनका यह दौरा दोहा में चंद अहम सिफारती प्रोग्रामों के पेश नजर हो रहा है जिसके तहत वो इलाकाई और आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए भारत के फाल नुक्ते नजर का इजहार करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर का खैर मकदम बहरीन के वजीर खारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जियानी ने किया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
दोहा के अपने दौरे के दौरान वजीर खारजा दोहा फोरम 2024 में नए दौर में तनाज़ात की सालिसी के मौजू पर एक पैनल मुबाहिसे में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने भारत के मुकामी सतह पर अदम इस्तेकाम के बराह रास्त असरात को भी उजागर किया और बुहरे अहमर में कशीदगी बढ़ने और जहाजरानी के एशियाई रास्तों पर इसके असरात पर भी तशवीश का इजहार किया। वजीर मौसूफ ने इस मौके पर कतर के वजीर आजम और नॉर्वे के वजीर खारजा से भी बातचीत की जिसमें इसराइल और ईरान के दरमियान गैर मुतवक दुश्मनी समेत आलमी तनाज़ात की उभरती हुई नौयत की अक्कासी की गई। कतर में डॉक्टर जयशंकर ने वजीर आजम और कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल सानी से बातचीत की। उन्होंने दोतरफा ताल्लुकात और गजा और शाम में जारी बहरान जैसे इलाकाई मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कतर के कॉमर्स और सनत के वजीर शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी के साथ भी मुलाकात की जिसमें इक्तसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। बहरीन से विनोद कुमार के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज से रूस का 3 रोजा दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर दिफा मॉस्को में रूस के वजीर दिफा एंड्रे बेलासोफ के साथ मुश्तरका तौर पर भारत रूस बैन सरकारी कमीशन की 21वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। इस कमीशन का ताल्लुक फौजी तकनीकी तआवुन और फौजी उमूर से है। दोनों रहनुमा भारत और रूस के दरमियान मुश्तरका शोबों के ताल्लुकात का जामे जायजा लेंगे जिनमें दिफा और सनअती तआवुन के अलावा दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान राबते भी शामिल हैं। भारत और रूस के वुज़राए दिफा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल भी करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सरहदी हिफाजती फोर्स BSF का 60वां यौम तासीस आज जोधपुर में मनाया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी होंगे। ये पहली मरतबा है कि जब जोधपुर में वाकई BSF राजस्थान फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स यौम तासीस की परेड की मेजबानी कर रहा है। ये साल BSF की डायमंड जुबली का साल भी है। पेश है एक रिपोर्ट।
ملک بھر سے بی ایس ایف سپاہی آج جودھپور میں بی ایس ایف ٹریننگ سینٹر گراؤنڈ میں منعقدہ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ بی ایس ایف کے سپاہی تقریب میں اپنی صلاحیت اور طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ بی ایس ایف کا ڈاگ اسکواڈ بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے گا۔ فورس کا خواتین دستہ بھی پریڈ میں حصہ لے گا۔ 7 سپاہیوں کو شجاعت کے ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا۔ گھریلو سطح پر تیار کردہ ہیلی کاپٹر دھرو اور MI-17 بھی پریڈ میں حصہ لیں گے۔ اپنے قیام سے ہی سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف نے بھارت کی علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے اور سرحدوں سے متصل علاقوں میں امن قائم رکھنے میں کلیدی رول ادا کیا ہے۔ جے پور سے جیتندر دیویدی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
شمال مشرقی بھارت کی گوناگونیت اور مالا مال ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے نئی دلی کے بھارت منڈپم میں اشٹ لکشمی مہوتسو منایا جا رہا ہے۔ 3 روزہ فیسٹیول آج اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس کا مقصد شمال مشرقی خطے کی 8 ریاستوں آسام، اروناچل پردیش، میگھالیہ، منی پور، ناگالینڈ، میزورم، تریپورہ اور سکم کی خوبصورتی، گوناگونیت اور عزائم کو اجاگر کرنا ہے۔ اس مہوتسو کے دوران 250 سے زیادہ فنکار اپنی منفرد دستکاریوں، ہینڈلوم اور زرعی اور باغبانی فصلوں بشمول 34 GI ٹیگ والی اشیاء کی نمائش کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
اشٹ لکشمی مہوتسو کا نام دیوی لکشمی کے 8 اوتاروں کے نام پر رکھا گیا ہے جو خوشحالی، دولت، علم، مذہب، زراعت اور دیگر خصوصیات کی علامت ہیں۔ اس تقریب میں شمال مشرقی بھارت کی مشہور موگا اور اوری سلک پویلین دستکاروں کے براہ راست مظاہرے اور خطے کے جغرافیائی مصنوعات پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ایک اور بڑی توجہ کا مرکز دیہی ہاٹ بازار ہے جو اس علاقے کے 320 کسانوں اور کاریگروں کی پیداوار اور فن کی نمائش کرتا ہے۔ ایک تکنیکی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے شمال مشرقی خطے کی ترقی کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا کہ مرکز ہر شمال مشرقی ریاست کی خصوصیات کو بہتر بنانے اور اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ سقلین کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
پرسار بھارتی کے چیئرمین نونیت سہگل نے کہا ہے کہ دوردرشن کا ویو OTT پلیٹ فارم خاندان کے تمام افراد کے لیے صحت مند اور صاف ستھری تفریح فراہم کرے گا اور عوامی نشریاتی ادارے کو اپنی رسائی کو زیادہ سے زیادہ سامعین تک بڑھانے میں مدد فراہم کرے گا۔
دوردرشن نے اپنا OTT ویوز ابھی لانچ کیا ہے۔ اس کا مکھ آدھار ہے کہ ہم صاف ستھرا منورنجن عام جن کو دینا چاہتے ہیں۔ بچوں کے لیے گیمز کا پلیٹ فارم بھی اس میں جوڑا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایسے پروگرام دوردرشن کے جس کو دیکھ کے ہم سب لوگ بچپن میں سے بڑے ہوئے ہیں، دوردرشن کے پرانے کاریکرم اس OTT پلیٹ فارم پر اپلبدھ ہیں۔
ملک شام میں شامی باغیوں نے اہم شہر ہمس پر قبضے کے بعد راجدھانی دمشق کا محاصرہ کر لیا ہے۔ باغیوں نے شامی حکومت کے خلاف بڑی پیش قدمی کرتے ہوئے ایک ہی دن میں 4 شہروں پر قبضہ جما لیا۔ باغیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے حلب پر قبضے کے بعد ملک کے تیسرے بڑے شہر ہمس کو مکمل طور پر آزاد کرا لیا ہے۔ باغیوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے قونیترا کے خطوں اور اسرائیل کی سرحد کے نزدیک درا کا بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ آسٹریلیا کے ایڈیلیڈ اوول میں جاری بارڈر گاوسکر ٹرافی کے دوسرے میچ کے تیسرے دن بھارت آج اپنی دوسری اننگز میں کل کے اسکور 5 وکٹ پر 128 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔ اور ہاکی میں عمان کے مسقط میں خواتین کے جونیئر ایشیا کپ میں بھارت آج اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش سے کھیلے گا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔
شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب، راشٹریہ سہارا اور ملاپ نے عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق قانون 1991 پر سپریم کورٹ کی جانب سے خصوصی بینچ تشکیل دیے جانے کی خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبارات کے مطابق اس معاملے پر 12 دسمبر کو سماعت ہوگی۔
آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کی طرف ملک کو آگے بڑھانے میں طاقت بنے۔ مرکزی وزیر سربانند سونوال نے کہا ہے کہ بھارت 2047 تک دنیا کے سرکردہ 10 سمندری ملکوں میں شامل ہو جائے گا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ امریکی ڈالر کا مقابلہ کرنے کے لیے برکس کی نئی کرنسی شروع کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ باغی فورسز نے ملک شام کے اہم شہر ہمس پر قبضہ کرنے کے بعد راجدھانی دمشق کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔